चाहे रामचरितमानस की सीता हूं, चाहे इस उक्ति का कथन करने वाली नायिका, हमें नहीं भूलना चाहिए कि दोनों उस मध्यकालीन व्यवस्था की नारियां हैं जिसमें नारी की सार्थकता चार दीवारी के अंदर ही प्रकट होती थी। जिस प्रेम का इतना गुणगान किया गया है, क्या वह उस व्यवस्था में संभव था? प्रेम या घृणा, व्यक्तित्ववान प्राणी ही कर सकता है। जिस व्यवस्था में स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण का कोई अवकाश न हो, रिपीट, जिस व्यवस्था में स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण का कोई अवकाश ही न हो, उसमें प्रेम और घृणा कर सकने का अवकाश कहाँ? इन पंक्तियों में ग्रामीण नायिका की वह छटपटाहट व्यक्त हुई है जो प्रिय की वास्तविक जीवन संगनी न बन पाने के कारण है। जीवन का अर्थ कर्म है। जो स्त्री प्रिय के साथ कर्म क्षेत्र में उतर नहीं सकती, वह जीवन संगनी कैसे हो सकती है? प्रिय के हाथों में घड़ा भर भर कर देने का अवसर मिला तो घर की चार दीवारी में घुटती हुई ग्रामीणा का जीवन सार्थक हो उठा। नायिका के सुख का कारण अपनी सार्थकता की यह अनुभूति है। ऐसा घर जो वस्तुतः उस दमघोटू व्यवस्था का प्रतीक है, जल गया तो बुरा नहीं हुआ। बेचारी को प्रिय का सुख तो मिला, सीता को भी अवध सहस्र समबन राजमहल छोड़कर ही मिला। अस्तु, तुलसी के नारी चित्रण पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर विचार करेंगे। बात चित्रकूट की चल रही थी। चित्रकूट तुलसी को बहुत प्रिय है। वह प्राकृतिक शोभा से युक्त है। राम वहां रहे हैं। वहां की प्रकृति भी अनुपम सुषमा से युक्त है। तुलसी ने राम को हमारे जीवन और जगत के बीच प्रतिष्ठित किया है। तुलसी का कहना है कि राम की स्नेह की इच्छा है तो स्नेह पूर्वक चित्रकूट का सेवन करो। चित्रकूट का सेवन जहाँ पावन वन है, सुहावने विहंग और मृग हैं, चित्रकूट देखने में उतना ही आनंद देता है जितना कि हरे भरे खेत का टुकड़ा। वहां विवेक के वृक्षों के समान सिद्ध साधु साधक और मुनियों के साथ सीता राम और लक्ष्मण का निवास है। वहां शीतल और पवित्र जल के निर्झर झर रहे हैं और मंदाकिनी नदी शंकर के जटा जूट के समान टेढ़ी मेढ़ी जटिल है। जहां बनुपावनो सुहावने विहंग मृग देख अति लागत अनंदु खेत खुट सो, सीता राम लखन निवासु बासु मुनिन को सिद्ध साधु साधक सबै विवेक बुट सो, झरना झरत झारी शीतल पुनित बारी मंदाकिनी मंजुल महेश जटा जुट सो, तुलसी जौ राम सो सनेहु साचो चाहिए तो से स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो। तुलसी को अयोध्या, चित्रकूट, काशी की प्रकृति ही नहीं प्रिय है, इन स्थानों के साधारण जन भी अत्यंत प्रिय हैं। जब कभी तुलसीदास की जीवनी पर कोई प्रामाणिक सामग्री सामने आएगी तब पता चलेगा कि वे भारत के विभिन्न स्थानों में कितना घूमे थे और उन स्थानों की साधारण जनता से कितना घुले मिले थे। चित्रकूट के कोल की रातों के राम प्रेम का वर्णन चित्रण उन्होंने यूं ही नहीं किया होगा, वह उनकी अपनी निजी जानकारी पर आधारित होगा। चित्रकूट की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि चित्रकूट ऐसा अचल अहेरी है जो चूकता नहीं, पातक पर सीधे वार करता है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस पर अपने विचार प्रकट करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है कि चित्रकूट के आसपास सहेरिये शिकारी होते हैं जो तेंदुओं और बाघों पर कुल्हाड़ी से सीधा वार करते हैं। इन्हीं सहेरियों के पर्यवेक्षण के आधार पर तुलसी ने चित्रकूट को घात न चुकने वाला, मुठभेरी मार करने वाला अहेरी कहा है। चित्रकूट की प्रकृति और वहां के लोगों को जानबूझकर उन सब से गहरा लगाव रखकर ही तुलसीदास ने चित्रकूट का वर्णन किया है। देश प्रेम की कविता करने का यही तरीका है, और उसके लिए ऐसी ही साधना की आवश्यकता पड़ती है। चित्रकूट के मुनि साधक सिद्ध तो खैर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वहां के वन्य जनों का तुलसी ने जिस आत्मीयता के साथ चित्रण किया है वह भलीभांति प्रकट करता है कि उन्हें वहां की कोल की रातों से कितना लगाव था, वे उनके स्वभाव आदि से कितना परिचित थे। तुलसी जिस स्थान का वर्णन करते हैं वहां की प्रकृति के साथ साथ वहां के सामान्य जनों का भी वर्णन करते हैं। प्रयाग और काशी के बीच एक स्थान है सीतामढ़ी। वहां सीतावट नाम का वृक्ष है जो सीता से संबंधित है। उस वृक्ष का वर्णन करते हुए तुलसी कहते हैं, यह वृक्ष ऐसा है मानो जटाजूट कसे महादेव ही वृक्ष रूप में शोभित हों। मरकत बरन परन फल मानिक से लसय जटाजूट जन रुख वेश हरु है। वट वृक्ष में जटाएं होती हैं, उसी के नाम और रूप के साम्य पर तुलसी ने वृक्ष को शंकर कहा है। सीतावट का वर्णन करने के बाद तुलसी उस स्थान और वहां के साधारण जनों का वर्णन करते हैं। यह स्थान सीतामढ़ी गंगा के पास है। यहाँ वाल्मीकि और सीता का निवास था। यहाँ के साधारण वट वृक्ष में भी शंकर का निवास है। यह स्थान योग जप यज्ञ और विराग का पवित्र पीठ है। यद्यपि रागी लोग बाहरी दृष्टि से निहार कर इसे रूखा समझते हैं, यहाँ के लोग भाव सिद्ध हैं। वे आयसु आदेश बाबू भलो भलो कहते हैं। देवधुनिपास मुनिवासु श्रीनिवासु जहाँ प्राकृत हूँ बट बूट बसत पुरारी हैं। जोग जप जाग को विराग को पुनित पिठु रागिनि पै सिठ ठीठ बाहरी निहारी हैं। आयसु आदेश बाबू भलो भलो भाव सिद्ध तुलसी विचार जोगी कहत पुकारी हैं। अयोध्या की सुंदरता का बखान करने के बाद राम अयोध्या के लोगों को अपना प्रिय कहते हैं। अति प्रिय मोहि इहां के वासी मम धाम दापुर सुख राशि हर्ष सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। रामचरितमानस की कथा का जो विन्यास हुआ है उसमें अयोध्या चित्रकूट और लंका के सामान्य जन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। किसी घटना या पात्र की अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव जनता के चेष्टाओं द्वारा तुलसी प्रकट करते चलते हैं। ग्रीक त्रासदियों के कोरस के समान कृति के बीच बीच में सामान्य जन आते हैं और वे घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया चेष्टाएं प्रकट कर जाते हैं। मानस में सामान्य जन भीड़ मात्र नहीं है, वे प्रायः विवेकवान और सहृदय हैं। वे ये सामान्य जन ही वन मार्ग में सीता लक्ष्मण और राम को मिले थे। कोल की रातों ने ही चित्रकूट में राम का अपूर्व स्वागत किया था। तुलसी के रामचरितमानस में चित्रित जो पात्र जितना ही शोषित दलित नीची समझे वाली जाति है वह राम के उतना ही निकट है। शबरी भामिनी है, हनुमान ने राम सीता दोनों को अपने उपकारों से ऋणग्रस्त बना रखा है, केवट राम सखा है, जटायु राम के पिता के समान है। लेकिन सामान्य जन से यहाँ उन लोगों से है जो राम के सीधे संपर्क में नहीं आते। वे घटनाओं से अलग हैं, लेकिन समूची कृति में ताप सूचक यंत्र का काम करते हैं। वे घटनाओं से विक्षुब्ध पुलकित उत्साहित निराश और व्यग्र होते हैं। तुलसी ने इन सामान्य जनों की प्रतिक्रिया कथा में अनेक स्थलों पर प्रकट करके उन्हें मानस की संरचना का अनुपेक्षणीय तत्व बना दिया है। इससे उनकी यह लोकवादी दृष्टि भी प्रकट होती है जो किसी व्यक्ति के चरित्र और किसी घटना का मूल्यांकन लोक और समाज की दृष्टि से करती है। जनकपुरी में राम लक्ष्मण को देखकर सभी लोगों की इच्छा होती है कि सीता का विवाह इन्हीं से होना चाहिए। लोग राम और लक्ष्मण को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। स्त्रियां विशेष रूप से उनकी शोभा से प्रभावित होती हैं। राम दशरथ के पुत्र हैं, विश्वामित्र के साथ आए हैं। उन्होंने मार्ग में अहल्या का उद्धार किया है, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इन सब बातों की चर्चा जनकपुर के पुरुष और नरनारी आपस में करते हैं। यहाँ तुलसीदास ने लोगों की जुबान से अपने मन की बात कहलाई है। राम वनवास के समय अयोध्या के लोग दुखी हैं। वे दुखी भी हैं, उत्तेजित, विक्षुब्ध और गंभीर भी। जनमत कैसा विविध और खरा होता है, यह अयोध्या वासियों की बातचीत से ज्ञान होता है। राम को वनवास मिलेगा, यह समाचार सुनकर लोग ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावाग्नि लगी देखकर लता और वृक्ष सूख जाते हैं। जो जहां यह समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। विषाद बड़ा है, धीरज नहीं धरा जाता। बातें सब मिल गई थी, विधि ने सब बिगाड़ दिया। जहां तहां लोग की कई को गाली देते हैं और कहते हैं, इस पापनी को क्या सोचा, इसने छाए छुपे घर पर आग रख दी। यह अपने हाथों से अपनी आंखें काढ़ना चाहती है, अमृत फेंक कर विष खाना चाहती है। यह कुटिल, कुबुद्धि, कठोर, अभागी है। यह रघुवंश रूपी बांस के वन में आग के समान लग गई है। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देख दयारी। जो जह सुनई सुधुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज दोई। मिलही मांज विधि बात बेगारी, जह तह देही के कहीं गारी। ये ही पापिनी बुझ क परेउ, छाई भवन पर पावक उधरेउ। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डार सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागे, भई रघुवंश बेनु बन आगे। लोग सिर्फ केकई को ही गाली नहीं देते, दशरथ की भी आलोचना करते हैं। तुलसी के मानस की प्रजा काफी निडर रही होगी जो अपने सम्राट दशरथ की ऐसी खुली आलोचना करती है। एक कहीं भल भूपन कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमत ही देन हा। जो हठि भयउ सकल दुख भजन भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुण गाजनु। कोई कहता है, राजा ने भला नहीं किया जो केकई को वर सोच समझकर नहीं दिया। राजा केकई की बात को पूरा करने की जिद में सारे दुखों के भाजन बने। मालूम पड़ता है स्त्री के वशीभूत होने से उनका सारा ज्ञान और गुण समाप्त हो गया। कोई कहता, इसमें भरत की भी साजिश है। कोई तटस्थ रहकर कुछ बोलता नहीं। कोई कानों में अंगुली डालकर और दांतों से जुबान काटकर कहता है कि यह झूठ है, ऐसा करने मात्र से तुम्हारे सारे अर्जित पुण्य क्षीण हो जाएंगे। एक भरत कर समंत कहीं, एक उदास भाए सुनिह रही। कान मूंदी कर रद गह जीहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं परम प्यारे। यह नहीं, एक जेठी विप्र वधु जो केकई को बहुत प्रिय थे उसे मनाने भी गई। केकई नहीं मानी तो विप्र वधु रोग को असाध्य मानकर उसे मतिमंद और अभागी कहती हुई घर लौट आई। लोग राम को वनवास के लिए जाने नहीं देना चाहते। राम वन को जाएं तो वे भी वन को जाने के लिए तैयार हैं। आखिर सबको माया से विशुद्ध करके और आधी रात के करीब सबको छोड़कर राम, सीता और लक्ष्मण चुपके से रथ पर बैठकर निकल जाते हैं। जगने पर अयोध्या के लोग बहुत दुखी हुए। उनके विषम वियोग का बयान नहीं किया जा सकता। अवधि समाप्त हो जाने की आशा में ही वे लोग जीवित बचे। एहि विधि करत प्रलाप अकलापा, आय अवध भरे परितापा, विषम वियोगु न जाय बखाना, अवधि आस सब राख ही प्राणा। अयोध्या के लोग भरत के साथ चित्रकूट जाते हैं। वहां भरत और राम कहीं मिलन नहीं होता। भरत के साथ साथ अयोध्या के लोग भी हैं और उधर चित्रकूट के कील किरात भी हैं। वे अयोध्या वासियों का अपूर्व स्वागत करते हैं। वन मार्ग में राम, लक्ष्मण और सीता को ग्रामीण नरनारी स्नेह सम्मान देते हैं। सामर्थ्य के अनुसार उनका दुख बांटते हैं, बटाते हैं, उन्हें सहज स्नेह देते हैं। चित्रकूट के कोल की रात तो राम के दीवाने हैं। राम के वन से लौटने पर अयोध्या के लोग राम का जो स्वागत करते हैं, तुलसी ने उसका चित्रण किया है। राम का आगमन सुनकर जो जैसा था वैसे ही उठकर उनका स्वागत करने चल दिया। इतनी हड़बड़ी में चला कि साथ में बच्चों और बूढ़ों को ले चलने की ताब नहीं रह गई। इनको साथ ले चलने में देरी हो जाने का अंदेशा था। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, कहो भाई, तुमने दयालु राम को देखा कि नहीं? जे जय सही तय सही उठे धावही, बाल वृद्ध कह संगन लावही, एक एकन कह बूझई भाई, तुम देख दयाल रघुराई। राम वनवास से लौटने पर सबसे मिलते हैं, किसी की उपेक्षा नहीं करते। तुलसीदास के राम ऐसे अवसरों पर राम का सहारा लेकर एक से अनेक हो जाते हैं, सबसे मिल लेते हैं और यह मर्म कोई जान नहीं पाता। सबको राम के मिलने का संतोष हो जाता है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिसोकी, छन मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहु न जाना। विपत्ति के समय लोग कैसा व्यवहार करते हैं। शोक से डूबे हुए लोग दशरथ की मृत्यु के पश्चात ननिहाल से लौटते हुए भरत को देखकर प्रणाम करते हैं। कुछ कहते नहीं, चुपचाप एक ओर चले जाते हैं। उनका यह रूप देखकर भरत आशंकावश पूछने का साहस नहीं जुटा पाते। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जुहारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। अयोध्या के लोग तो शोक से स्तब्ध और जड़ी भूत हैं। लेकिन आग लगने पर लंका के लोगों की हड़बड़ी, हलचल, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, रावण के प्रति आक्रोश और घड़बड़ाहट देखिए। दशरथ मृत्यु के समय लोगों के मन में शोक के साथ साथ केकई के आचरण के प्रति आक्रोश भी था। राम के वन गमन का गहरा दुख भी था, लेकिन वह दुख पुरवासियों के हृदय में बहुत गहरे समा गया था। लेकिन लंका दहन में त्वरा और उसका फैलाव, शोर शराबा, चीख पुकार, खास तौर पर ऐसे मौकों पर औरतों की गाली देने की आदत, यह सब चित्रित और वर्णित है। गांव में आग लगने पर जो दृश्य उपस्थित होता है, जैसी भयानकता और भागम भाग मचती है, विकराल आग लगने पर जितनी हड़बड़ी में घर का माल असबाब बाहर निकाला जाता है, बाप पूत, माँ बहू, बच्चे वृद्ध सब जिस प्रकार एक दूसरे को पुकारते हुए साथ ही एक दूसरे को छोड़कर भागते हैं, उस सब का निहायत सजीव चित्रण कवितावली में मिलता है। जहां तहां आग की लपटें भभक रही हैं, घर जल रहा है, भागो भागो आग लग गई रे, बाप कहां, माँ कहां, भाई बहन कहां, पत्नी भाभी कहां, छोटे छोटे छोरे कहां, बेवकूफों भगो भगो, हाथी को खोल दो, घोड़ों को खोल दो, भैंस बैल बकरियां खोल दो, जो सोता है उसे जगाओ,
जगो रे जगो। जहां तहां बुबुक बिलो की बुबकारे देत, जरत निकेत धावो धावो लागी आगिरे। कहां तात मात भ्रात भगनी भामिनी भाभी, ढोठा छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागिरे। हाथी छोराओ घोरा छोराओ, महिष वृषभ छोराओ, छेर छोराओ सोओ सो, जगाओ जाग जागिरे। आग लग गई आग लग गई, कहते हुए लोग भाग भाग कर जहां तहां दौड़ पड़े। बिटिया को माँ और पुत्र का पिता नहीं संभालता। बाल खुले हैं, कपड़े खुले हैं, धुएं धुंध से लोग अंधे हो गए हैं। बालक बूढ़े बार बार पानी पानी चिल्ला रहे हैं। घोड़े हिनहिनाते हैं, हाथी चिंघाड़ते हुए भागे जाते हैं। वे भारी भीड़ को ठेल पेल कर रौंद खूंद डालते हैं। लोग एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाते और बिलबिलाते हैं, अकुलाते हैं। बाप रे बाप, आग की लपट और गर्मी से हम तपे और झुलसे जा रहे हैं। लगी लागी आगी, भागी भागी चले जहां तहां। धिय को न माय बाप पूत न संभा रही। छुटे बार बसन उधारे धूम धुंध अंध, कहें बार बूढ़े बार 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 रही। हय ही नात भागे जात घहरात गज, भारी भीड़ ठेली पेली रौंदी खौंदी डा रही। नाम लय चिलात बिललात अकुलात, अति तात तात तौ सियत झौ सियत झा रहे। रावण की रानियां परस्पर कहती हैं, घर का तिल तिल सामान भी तो बाहर नहीं आ पाया। माल असबाब न मैं निकाल पाई न तू निकाल पाई। जान की पड़ी थी भंडार और सामान की फिक्र कौन करे। मेघनाथ की तरफ देखते ही वे मंदोदरी खींच कर कहती है, इसी दाढ़ी जार का बोया हम सबको काटना पड़ रहा है। मिज मिज हाथ धुनय माथ दस माथ तिय, तुलसी तिलौ न भयो बाहिर अगार को। सब अस बाबू डाढ़ो मैं न काढ़ो तै न काढ़ो, जिय की परी संभार सहन भंडार को। खिजती मंदो वय सविषाद देखी मेघनादु, बयलुनियत सब याही दाढ़ी जार को। तुलसी ने काशी और काशी के लोगों का भी वर्णन किया है। काशी को तुलसी पूज्य नगरी मानते हैं। जह बस शंभु भवानी सो काशी से ई अकस न। लेकिन काशी निवासियों को तो एक स्थान पर तुलसी ने शंकर के समान कह दिया है। जो लोग तुलसी को नारी निंदक मानते हैं, उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि तुलसी काशी की प्रत्येक नारी को पार्वती के समान मानते हैं, समान मानते हैं। रिपीट, जो लोग तुलसी को नारी निंदक मानते हैं, उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि तुलसी काशी की प्रत्येक नारी को पार्वती के समान मानते हैं। लोक बदेहूं लोक बेदहूं विदित बारा नसी की बड़ाई, बासी नर नार ईस अंबिका स्वरूप हैं। ऐसे काशी में महामारी दरिद्रता का प्रकोप देकर तुलसी कराह उठे थे। वे अपने भाववादी और धार्मिक भावनाओं के कारण उसे कलयुग का प्रभाव मानते थे। कलयुग का प्रभाव मानते लेकिन खुद पर दुख कातर और सहृदय न होते तो उन्हें मानसिक पीड़ा न होती तो वे काशी में फैली महामारी और लोक में व्याप्त दरिद्रता और उस दरिद्रता को और भी घातक बनाने वाले अकाल का हृदय वेधी वर्णन न कर पाते। वे राम कथा का वर्णन करते समय सामान्य जनता के दैनिक सुख दुख को नहीं भूलते। सच्ची बात यह है कि कि वे राम कथा का विन्यास अपने ही देश और काल की सामान्य भूमि पर ही करते हैं। तुलसी की राम कथा तुलसी के युग को की भी कथा है, लेकिन सामान्य जन्मित स्त्रियों की गणना होती है कि नहीं? और क्या इसमें कोई शक है कि तुलसी ने अपनी कृतियों विशेषतः रामचरितमानस में सैकड़ों स्थानों पर नारी की निंदा की है? इस ढंग से की है कि उसमें कोई मुरव्वत या लिहाज से काम नहीं लिया है। ब्राह्मण जितने पूज्य, नारी और शूद्र उतने ही अपूज्य। अवगुण आठ सदा उर रहहीं, नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं। मान लिया कि यह रावण की उक्ति है, लेकिन सुन ही सती तव नारी स्वभाव, तो शंकर कहते हैं, और सती किन्ह चह तहु दुराऊ, देखाउ नारी स्वभाव प्रभाव, या विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अध अवगुण खानी, आदि तो स्वयं तुलसीदास कह रहे हैं पाठकों से। नारी मध्यकालीन कवियों के यहाँ, विशेष रूप से निर्गुण संतों के यहाँ सांसारिकता में फंसाने वाली माया की प्रतीक है, माया का प्रतीक है। कबीर आदि के यहाँ नारी की निंदा कम नहीं है, लेकिन तुलसीदास जितनी नारी निंदा किसी अन्य सगुण भक्त के यहाँ नहीं मिलेगी। केवट, शबरी, जटायु को सहानुभूति देने वाली तुलसी के सहृदयता नारी की बुराई करते समय कहाँ चली जाती है? शबरी राम से कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मय मति अंध मंद अधारी, जबकि उन्हें लिखना चाहिए था दीन ते दीन दीन अति नारी। यहां तुलसीदास के विचार और उनकी सहृदयता में परस्पर विरोध था। तुलसीदास के जीवन में किसी नारी ने या नारियों ने क्या किया था यह आज कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने नारियों को विविध रूपों में समझा बूझा था। उन्होंने नारी जीवन का गहरा पर्यवेक्षण किया था, परिचय प्राप्त किया था। इसी परिचय ने संभवतः उन्हें नारियों का निंदक और नारियों के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाला बनाया था। अन्य वस्तुओं और व्यक्तियों की तरह नारियां भी अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। नारी को जितने विविध रूपों में तुलसी ने चित्रित किया है और नारी चित्रण करते समय जितनी सहानुभूति तुलसी ने नारी पात्रों को दी है, उतनी मध्यकाल में किसी अन्य कवि ने नहीं दी है। नायिका भेद के आधार पर काव्य रचने वाले रीतिकालीन कवियों, नायिका भेद का विवेचन करने वाले काव्य शास्त्रियों और अपने आश्रयदाता सामंतों के अनेक विवाह कराने वाले चंदवरदाई जैसे आदिकालीन कवियों ने भी नहीं। स्त्री नायिका ही नहीं है, वह माँ, पत्नी और पुत्री भी होती है। वह दुख सुख में पति का साथ देती है। वह सरल और कुटिल होती है। वह परद्वेषी, चुगलखोर और सहनशीला होती है। इन सबका चित्रण तुलसीदास के यहाँ जितना मिलता है किसी अन्य कवि के यहाँ नहीं। नारी को नायिका भेद तक सीमित न रखने वाले हिंदी के अन्य महाकवि हैं सूरदास। उनकी नारी के रूपों की इतनी विविधता नहीं है तो नारी निंदा भी नहीं है।